शांति। आकाश के उस पार भी आकाश है, आकाश पे बहते समय की तरह बहते रहो जैसे बहे ये हवा। आकाश के उस पार भी आकाश है, झरते रहो बादल झरे जिस तरह, दरिया मुड़े पैरों तले जिस तरह, सागर में भी गिर के कभी खाली ना हो। आकाश के उस पार भी आकाश है, ऐसा कहा जाता है। एवरीथिंग इज इन द स्टेज ऑफ फ्लक्स, सब कुछ बह रहा है, सब कुछ चल रहा है, रुका कुछ भी नहीं है। इस संसार को ओशन ऑफ वाइब्रेशंस कहा जाता है, इस संसार को प्रकंपन का समुद्र कहा जाता है, ओशन ऑफ वेव्स, ओशन ऑफ वाइब्स, ओशन ऑफ वाइब्रेशंस। अव्यक्त मूल्य में हमने सुना, एक शब्द बोलो और वाइब्रेशंस 100 शब्दों का फैलाव तब असर पड़ेगा। विज्ञान ने एक बहुत बड़ी खोज की है जिसका नाम है द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, पर इसके बारे में योगी जन, तपस्वी जन पहले से ही जानते थे। नाम अब दिया गया। और एक दूसरा नियम जिसको कहा जाता है आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा है, वो वास्तव में तब तक नहीं समझा जाएगा जब तक प्रकंपन का ये नियम नहीं समझा जाएगा, द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। तो आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे द लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पर। ये लॉ क्या है? ब्राह्मण जीवन में इसका क्या महत्व है? ब्राह्मण जीवन में कहां कहां इसको लागू किया जा सकता है? ये जो लॉ है इसकी विधि क्या है, स्टेप्स क्या है, टिप्स कौन कौन से हैं इस लॉ को यूज करने के, ये सारी बातें हैं जिसकी हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहला, व्हाट इज लॉ ऑफ वाइब्रेशन। क्वांटम फिजिक्स कहता है कि संसार वाइब्रेशंस का बना हुआ है। हमें दिख रहा है ये माइक एक जगह स्थिर है, पर यदि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखो तो एटम्स, मॉलिक्यूल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड अल्टीमेटली एनर्जी है। यहां पर स्थिर कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज इन द स्टेज ऑफ फ्लक्स, बह रहा है। यूनिवर्स को एनर्जी ऑफ, यूनिवर्स को ओशन ऑफ एनर्जी कहा जाता है। यहां पर ऊर्जा का समुंदर है। ये टेबल, ये माइक, ये स्टैंड कुछ भी स्थिर नहीं है, अंदर सब हिल रहा है, वाइब्रेट हो रहा है। जैसे जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था तो लोग कभी ये मानेंगे नहीं कि बैक्टीरिया जैसी भी कोई चीज होती है, परंतु जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ढूंढा गया तब बहुत सारी चीजों का पता चला। ये जो हमारी स्किन है, 2007 में एक स्टडी है जो कहती है कि स्किन में 182 बैक्टीरिया है जो कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। तो जो दिख नहीं रहा है इसका मतलब ये नहीं वो है नहीं। उसी तरह चीजें स्थिर दिखाई दे रही है परंतु जरूरी नहीं है कि वो है नहीं। ये सारा संसार इज इन द स्टेज ऑफ वाइब्रेशंस। ये सारा संसार ऊर्जा से भरा हुआ है, चहुओं और ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी ही एनर्जी है, और सब कुछ वाइब्रेट हो रहा है, बह रहा है, स्टेज ऑफ फ्लक्स। उसी तरह हमारे जो विचार हैं, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस, इंटेंशंस, ये भी वाइब्रेट हो रहे हैं। जो कुछ मैं भेज रहा हूं वो वापस आएगा। जिस फ्रीक्वेंसी से मैं वाइब्रेट कर रहा हूं वही वापस आएगी। फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स, इंटेंशंस, जो कुछ भी बाहर जाएगा सेम आएगा। जैसे एक राज्य में एक लकड़हारा था, अकेला था, शादी नहीं की थी, बूढ़ा भी हो गया था, पर राजा का मित्र था, चंदन की लकड़ियां बेचता था। और सारी उम्र बेचने के बाद एक दिन उसे लगा कि मेरा मित्र राजा है और मैं अभी तक गरीब हूं और मैंने कुछ भी नहीं पाया जीवन में, और हम दोनों साथ पले बड़े बचपन में और वो राजा बन गया, गुरुकुल में साथ थे और मैं लकड़हारा ही रहा। वो सोचता है कितना अच्छा होता है ये राजा यदि मर जाए तो, क्योंकि राजा है, और ये अगर मर गया तो मेरी चंदन की लकड़ियां कितनी बिक जाएगी, क्योंकि राजा की अंत्येष्टि के लिए, फ्यूनरल के लिए तो मेरी चंदन की लकड़ी से अच्छी कोई लकड़ी नहीं है, तो बहुत ढेर सारी लकड़ियां बिक जाएगी और मुझे कितना पैसा मिलेगा। सोचता है वाह ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि राजा मर जाए। उधर राजा बैठे बैठे अचानक उसके मन में संकल्प आता है मेरे राज्य में सब कुछ कितना अच्छा है। और उसे ख्याल आता है अपने उस मित्र का लकड़हारे, और वो सोचता है अकेला, नाबाल बच्चे, कोई भी नहीं है, और इतनी बड़े इतनी सारी चंदन की लकड़ियां उसके पास है, और वो अकेला कर क्या रहा है। वो यदि मर जाए तो वो सारी लकड़ियां राजकोष में आ जाएगी। तो ये सोचने लगता है, इधर इसने सोचा, इधर इसने सोचा। फिर दोनों मिलने आते हैं, मिलते हैं, वाइब्रेशंस में बहुत अंतर है, इंटेंशंस बहुत अलग है, दोनों की एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग है वो बहुत बदली हुई है। अनकंफर्टेबल दोनों बैठे हुए हैं, असुविधाजनक लग रहा है दोनों को भी। और फिर राजा पूछता है, आखिर ये क्या हो रहा है हमारे बीच में, ऐसे तो कभी हुआ नहीं, हम लोग कितनी बार मिले हैं, कितने पवित्र संबंध है, और आज ये ऐसा क्यों लग रहा है। तो लकड़हारा कहता है कि सही बात बताओ तो मैंने आपके लिए ये सोचा। और राजा भी कहता है, अच्छा तुमने ऐसा सोचा, मैंने भी ऐसा सोचा है। एक थॉट इधर वो गया और उधर स्टिमुलेट किया उसको, जैसे ट्यूनिंग फोक, वाइब्रेट करो, उसके सामने दूसरा रखो, वाइब्रेट होने लगता है। तो ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस है, एक्चुअली आकर्षण का जो नियम है, लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, उसका पूरा आधार स्तंभ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाइब्रेशंस है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहता है कि हर चीज वाइब्रेट हो रही है, कोई भी चीज स्थिर नहीं है, संसार वाइब्रेशंस का बना हुआ है। इसको कहा जाता है साइंटिफिक लैंग्वेज में द यूनिफाइड फील्ड। ये जो ओशन संसार है, इट इज नोन एज द यूनिफाइड फील्ड। और दो है, एक है माइक्रोकॉज्म, एक है मैक्रोकॉज्म, बाहर का जगत, आंतरिक जगत। जैसे बाहर का जगत वाइब्रेट हो रहा है, उसी तरह अंदर का जगत भी वाइब्रेट हो रहा है, माइक्रोकॉज्म भी वाइब्रेट हो रहा है। हमारा हर विचार वाइब्रेट हो रहा है, बाहर जा रहा है, हर भावना, हर इमोशन वाइब्रेट हो रही है, बाहर जा रही है, हर संकल्प, हर भावना, हर इमेजिनेशन, हर इच्छा वाइब्रेट हो रही है। और इसके बहुत सारे प्रूफ्स और क्या कुछ दिया जाता है। सबसे ज्यादा काम कभी निकोला टेस्ला ने इसके ऊपर किया था। आइंस्टाइन से कभी किसी ने पूछा था, क्या आप इस संसार के सबसे स्मार्ट व्यक्ति हो, एंड द मोस्ट इंटेलिजेंट। उसने कहा था, मैं नहीं हूं, गो एंड आस्क निकोला टेस्ला। वाइब्रेशंस पर सबसे ज्यादा जिसने काम किया और जिसकी अप्रोच आध्यात्मिक थी, वो आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं था, पर उसके बहुत सारे सिद्धांत स्पिरिचुअल सिद्धांत है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहता है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं, जो मेरी भावनाएं हैं, जो मेरी इच्छाएं हैं, वो इस कायनात में, इस यूनिवर्स में जा रही है, और सेम वैसा ही मेरे पास आ रहा है, और परिस्थितियों का निर्माण हो रहा है। मैं सोचता हूं मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, मैं गरीब हूं, यही वाइब्रेशन संसार में जा रहे, कुछ रिएक्शन हो रही है, और फिर घटनाओं का निर्माण हो रहा है, और गरीब होते जा रहा हूं। मैं सोचता हूं मैं बहुत अमीर हूं, मैं बहुत अमीर हूं, मैं सोचता हूं मैं बहुत हेल्दी हूं, मैं सोचता हूं कि मैं स्वस्थ हूं, वही प्रकंपन संसार में जा रहे हैं, कुछ रिएक्शन हो रही है, और हेल्थ मेरे पास आ रही है। मैं सोचता हूं मेरा भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं बहुत खुश हूं। प्रकंपन संसार में जा रहे, रिएक्शन हो रही है, घटनाओं का निर्माण हो रहा है। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। तो ब्राह्मण जीवन में सबसे पहला प्रश्न है कि ये जो लॉ ऑफ वाइब्रेशन है इसको कहाँ कहाँ अप्लाई करें, ये पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है स्टेप्स क्या क्या है, और तीसरा प्रश्न है कौन कौन सी एक्सरसाइज है। तो सबसे पहला प्रश्न, इस लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को कहाँ अप्लाई करें। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन साथ साथ चलते हैं, हैंड इन हैंड। और क्यों कई लोग इस लॉ के विरुद्ध में भी खड़े हैं, और क्यों ऐसा है कि कई लोग इस लॉ को मानते नहीं है, कहते हैं ये सूडो साइंस है, झूठा विज्ञान, ऐसा भी कहने वाले हैं। शायद पूरी तरह से इसको समझा नहीं है सबने। तो ब्राह्मण जीवन में बाबा ने कहा है सबसे श्रेष्ठ शक्ति है संकल्प शक्ति। बाबा ने कहा है तुम्हें सबसे श्रेष्ठ खजाना जो बाबा ने दिया है वो पहला खजाना है संकल्पों का खजाना। 9 खजाने हैं ब्राह्मण जीवन में, उसमें पहला खजाना संकल्प का खजाना। तो इस ब्राह्मण जीवन में कहां अप्लाई किया जाए इस लॉ को, ऐसे 7 H है जहां पर इस लॉ को अप्लाई किया जा सकता है। सबसे पहला हाईली इफेक्टिव अमृत वेला, पहला H जहां पर इस लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को अप्लाई करना है, हाईली इफेक्टिव अमृत वेला। रात को सोते समय ही ये संकल्प करना कि कल सुबह मैं बहुत जल्दी उठ रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं और मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली हो रहा है, सारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो गए और मैं बाबा के साथ कंबाइंड हूं, एक हूं। रात को ही हमने देख लिया, सुबह उठते ही पहला संकल्प कि मेरा अमृत वेला बहुत शक्तिशाली होगा, क्योंकि हमने ऐसे थॉट क्रिएट किए, इस यूनिवर्स में भेजे, सिचुएशंस वुड बी क्रिएटेड, घटनाओं का निर्माण होगा। चॉइस है मेरे पास, इट इज नॉट चांस बट चॉइस। एक व्यक्ति था हमेशा ही खुश रहता था जिसका नाम था अब्दुल्ला। उसको लोग पूछते थे तुम इतना खुश क्यों रहते थे, उसने बताया नहीं। तो जब मरने की बारी आई तब उसने एक बार बताया कि मैंने अपने जीवन में एक नियम बनाया, जब भी सुबह उठता हूं अपने आप से बात करता हूं, अब्दुल्ला तुमको क्या चाहिए, सुख या दुख, खुशी या गम, और फिर मैं खुद आंसर करता हूं कि मुझे खुशी चाहिए। चॉइस, अर्ली मॉर्निंग चॉइस करता हूं, सुबह सुबह चॉइस करना, मुझे आज का दिन वेस्ट करना है या सफल करना है, चॉइस मेरी है। खुद ही आंसर करना, नो आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट। सो इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस, नॉट चांस। भाग्य, नसीब, किस्मत, ये सब कमजोर आत्माओं के शब्द है। अपना भाग्य मैं खुद बनाऊंगा। बाबा ने कहा संडे की मुरली, तुम कौन हो, भाग्य विधाता की संतान। तुम्हारा भाग्य कितनी महिमा की, भाग्य की बाबा ने। तो सबसे पहला चीज कहां अप्लाई करना है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को, अमृत वेला, हाईली इफेक्टिव हाईली पावरफुल अमृत वेला। दूसरा है हार्नेसिंग ज्ञान पावर, हार्नेसिंग द पावर ऑफ नॉलेज, हार्नेस करना अर्थात वश में करना, काबू में करना, अपने कंट्रोल में लाना पावर ऑफ नॉलेज को। मुरली जो है ये ज्ञान है, एंड ज्ञान में शक्ति है, पावर है। इस ज्ञान की शक्ति को अपने वश में कर लेना अर्थात इसका मास्टर बन जाना, अर्थात इसको संपूर्ण रूप से धारण कर लेना, शब्द शब्द को, वाक्य वाक्य को, इसके लिए भी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस की आवश्यकता है। कैसे? विजुलाइज करना कि मैं मुरली का स्वरूप बन गया हूं, देखना स्वयं को कि यह ज्ञान मेरे जीवन में परिस्थिति आई और इस ज्ञान को मैं अप्लाई कर रहा हूं, यह संकल्प करना है कि यह ज्ञान मुझ में समा गया है। जो विजुलाइज करेंगे, जो रिपीटेशन करेंगे, जो अफर्मेशन करेंगे, वो अपने आप होगा। जो जो इस प्रकृति में भेजा जाएगा संकल्प कि इस मुरली का सारा ज्ञान मुझ में समा रहा है, संकल्प मैं एकाग्र हो रहा हूं, संकल्प जो मुरली के शब्द मेरे कानों में पड़ रहे हैं, कानों से सीधा हृदय में जा रहे हैं और मैं इसका स्वरूप बन रहा हूं, हार्नेसिंग पावर ऑफ नॉलेज। ये सेकंड एच लॉ ऑफ वाइब्रेशंस का ब्राह्मण जीवन में। तीसरा एच हैबिट्स, या कहो संस्कार परिवर्तन। ऐसी एक आदत है जो छूटी नहीं रही है, सब कुछ किया, सब कुछ कर लिया, फिर भी नहीं छूट रही है, पर वो आदत जैसे संस्कार या कहो एडिक्शन बन गया है। ऐसी आदत को छोड़ने के लिए भी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम आएगा, या नई हेल्दी हैबिट धारण करने के लिए भी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम करेगा। संकल्प करना, विजुलाइज करना, अफर्मेशन करना, बार बार देखना कि मैं इस आदत से मुक्त हूं, यह आदत को मैंने छोड़ दिया है, मेरी सारी दिनचर्या ऐसी बीत रही है जिसमें ये बात हो ही नहीं रही है जिसने मुझे पकड़ के रखा है। अपने आप को देखना, विजुलाइज करना और संकल्प करना। अफर्मेशंस तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रेजेंट टेंस, एक होता है फ्यूचर टेंस, एक होता है नेचुरल। जैसे एक व्यक्ति है 30 साल से बीड़ी पीता है, शराब पीता है, वो कैसे तीन भागों में विभाजित करेगा अपने संकल्पों को? पहला, मैंने सिगरेट पीना छोड़ दिया है, प्रेजेंट टेंस। दूसरा फ्यूचर टेंस, मैं सिगरेट पीना जल्दी छोड़ने वाला हूं। तीसरा नेचुरल, बहुत ही आसान है, इससे आसान काम तो कुछ है ही नहीं। जो चीज छोड़ना है उसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। इसको कहा जाता है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस अर्थात एक स्टेटमेंट जो रिपीट किया जाए बार 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 बार। जैसे मुझे खांसी है, मेरी खांसी जा रही है, मेरी खांसी समाप्त हो रही है, पहला। दूसरा, मेरा ये घुटनों का दर्द तुरंत जल्दी खत्म होने वाला है, मेरे घुटनों का दर्द है ही नहीं, अभी थोड़े दिनों में ही खत्म हो जाएगा, बस कुछ ही दिनों के लिए है। नेचुरल, ये दर्द है ही नहीं, मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं है, एकदम ठीक है, 3 घंटा भी बैठ सकता हूं नीचे, नेचुरल। प्रेजेंट, फ्यूचर, नेचुरल हैबिट्स। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस को अप्लाई करना है हैबिट्स पर। जो जो श्रीमत विरुद्ध आदतें लगी हुई है, ऐसी आदतें जो श्रीमत नहीं है, उन पर काम करना है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के द्वारा। सारे प्रकृति में भेजना है संकल्प, वो संकल्प वापस आएगा, मैं इस आदत से मुक्त हूं, और ये सारा, सारी प्रकृति, सारी कायनात मेरी मदद कर रही है। अंग्रेजी में कहा जाता है कि जो तुम बहुत गहराई से सोचते हो या इच्छा करते हो, सबकॉन्शियस माइंड में, अवचेतन मन में, सारी कायनात षड्यंत्र करेगी उसे साकार करने के लिए। द एंटायर यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक इट कम ट्रू, षड्यंत्र करेगी कि वो साकार हो जाए। सारी घटनाएं ऐसी निर्माण होगी कि तुम अपने लक्ष्य के करीब जाओगे। तो तीसरा है हैबिट्स एच, चौथा है हेल्दी रिलेशनशिप्स। यदि संबंधों में कड़वाहट है, यदि संबंधों में खिंचातान है, संबंधों में बाबा कहते हैं लून पानी, दो आत्माएं टकरा रही है, संकल्प टकराते, संस्कार टकराते, आदतें टकराती, उनके विचार टकराते हैं, उनके स्वभाव टकराते हैं, फ्रिक्शन हो रहा है हर दिन इच्छाओं में, वो सोचता है ये ऐसा होना चाहिए, वो सोचता है वैसा, दो व्यक्ति साथ में रहते हैं और दोनों में मौन युद्ध, कोल्ड वॉर, एक ही घर में रहते हैं परंतु लड़ाई चालू है, मुख से नहीं मौन से लड़ाई, संकल्पों की लड़ाई है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस का प्रयोग कहां करना है? हेल्दी रिलेशनशिप्स के लिए, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स के लिए। कैसे करेंगे? दो व्यक्ति है, दोनों की बनती नहीं है, संकल्पों के द्वारा वाइब्रेशंस अलाइन करने हैं, अपने वाइब्रेशंस उसके वाइब्रेशंस के साथ, क्योंकि वो दूसरी फ्रिक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहा है, हम दूसरी फ्रिक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए जैसे समीप आते लड़ाई होती है। वाइब्रेशंस अलग है, फ्रीक्वेंसीज अलग है, ये 256 हर्ट्ज है, ये 500 अबो हर्ट्ज चल रहा है। संकल्प करना है कि तुम प्रेम स्वरूप आत्मा हो, तुम शांत स्वरूप आत्मा हो, उस आत्मा के लिए। या फिर संकल्प करना है कि मेरे तुम्हारे साथ जो संबंध है बहुत मधुर है, बहुत मीठे हैं, और दो व्यक्तियों में जो लड़ाई है उसका एक ही कारण है, अहंकार, ईगो। और अंग्रेजी में कहा जाता है इन द बैटल ऑफ ईगो द विनर इज लूजर। अहंकार के युद्ध में जो जीतता है वो हारता है, और अहंकार के युद्ध में जो हारता है वो जीतता है। हमने किसी को प्रूव कर दिया कि तुम गलत ही थे, ये तुमने जो किया ना एकदम गलत है, मैंने जो किया, मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मेरी जो प्लानिंग थी वही राइट थी, तुम्हारी प्लानिंग ही गलत थी, हमने प्रूव कर दिया। पर वास्तव में हमारी हार हुई है, क्योंकि अहंकार की जीत हो रही है यहां, और अहंकार की जीत संबंधों में व्यक्ति की हार है। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स में संकल्प करने हैं तीन प्रकार, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल। हर संकल्प को तीन भाग में विभाजित करना है और इनको रिपीट करते जाना होता है, जैसे एडिक्शंस के लिए कहा वैसे ही इधर भी संबंधों के लिए भी। तो हेल्दी रिलेशनशिप्स, उसके बाद में अगला हाइटनिंग सर्विस। हाइटनिंग मतलब इंक्रीज करना, इंटेंसिफाई करना सर्विस को, जो सेवाएं हो रही है अगर उनको बढ़ाना है तो विधि है मनसा सेवा, अर्थात लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, अर्थात लॉ ऑफ अट्रैक्शन। कोई प्रोग्राम है शाम को या सुबह या सेंटर पर लोग आने वाले हैं, पहले से ही उनको उस प्रकंपन देने, पहले से ही उनकी सेवा करनी है कि ये देव कुल की आत्माओं आ जाओ, जो जो आत्माएं मेरे सामने आएगी सत्युग के संस्कार इमर्ज हो जाएंगे, जो जो आत्माएं किसी भी धर्म की होने दो, है तो आत्मा और उसका पिता एक ही परमात्मा, और वो रहने वाली उसी घर की है, अभी किसी दूसरे धर्म में चली गई है, ये सोचना ही नहीं कि ये बीके नहीं है। हम कौन है स्टैंप लगाने वाले? नॉन बीके। वास्तव में ये कहना भी थोड़ा सा गलत है, ये बीके का प्रोग्राम या नॉन बीके का प्रोग्राम। हाँ ये कह सकते हैं भावी ब्राह्मण, भावी ब्राह्मण आने वाले हैं, टू बी वुड बी ब्राह्मिन्स, ये थोड़ा बेटर वर्ड है। हम कौन हैं ये कहने वाले कि ये नॉन बीके है, एक माता थी जिसके पति ने उसका 20 साल तक विरोध किया, बहुत तंग किया, झगड़ा किया पवित्रता के लिए और बहुत कुछ, और 20 साल के बाद ज्ञान में आ गया। मतलब 20 साल जब विरोध कर रहा था तब भी वो देव कुल की आत्मा थी, थी ना, इसलिए तो आई बाद में। पर हर एक का पार्ट खुलने का अपना टाइम है। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस अर्थात हमारे बोल से पहले हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं तक पहुंचे, बोल बहुत बाद में, कोर्स बहुत बाद में, और कोर्स कराना अर्थात आधा कोर्स सूक्ष्म अवतन में आधा कोर्स नीचे, अमृत वेला ही उन सब का कोर्स कराना, तुम आत्मा हो, ये तीन लोक, ये परमात्मा, ताकि नीचे कुछ ज्यादा बोलने की आवश्यकता ही नहीं। बाबा ने कहा एक बोल में 100 शब्दों का वाइब्रेशन समाया हुआ हो तब असर पड़ेगा। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहां अप्लाई करना है, सेवाओं में अप्लाई करना है। उसके बाद में लॉ ऑफ वाइब्रेशंस अप्लाई करना है हेल्प इन अचीविंग एम, जो लक्ष्य है उस तक पहुंचने के लिए लॉ ऑफ वाइब्रेशंस अप्लाई करना है। हमारा लक्ष्य है फरिश्ता बनना, तो अपने आप को देखना कि मैं संपूर्ण फरिश्ता बन चुका हूं और वो फरिश्ता मुझ में आ रहा है और मुझ में समा गया। फरिश्ता बनना नहीं है, फरिश्ता हूं। फरिश्ता बनने की विधि क्या है, मैं फरिश्ता हूं, पहले से ही सोच लेना कि हूं, फील करना उसको, डीपली फील करना कि मैं हूं, ताकि वैसा ही सब कुछ हो। जो लक्ष्य है उसको पहले से फील करते जाना। जैसे जॉर्ज वाशिंगटन, छोटा सा बच्चा था, पैसे नहीं थे, गरीब था, स्कूल में काम करता था, नौकरी थी, नौकरी, बच्चे स्कूल में पढ़ रहे और बेचारे को नौकरी करनी पड़ती थी। कौन सी नौकरी, दो पीरियड्स के बीच में बेल बजाने की। पर वो क्या कहता था पता है, टन 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 आए जॉर्ज वाशिंगटन, अपने आप से बातें करता था, टन 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 आई जॉर्ज वाशिंगटन विल बिकम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, टन 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 आई जॉर्ज वाशिंगटन विल बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वन डे, टन टन टन। और उसने अपने आप को देखा कि मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट, एक खेत में काम करने वाला, गांव में रहने वाला बच्चा, गावड़े का छोरा बाबा की भाषा में, गरीब, पैसे नहीं, शिक्षा नहीं, शिक्षण नहीं, कुछ नहीं, नौकरी करता है पैसे कमाने के लिए, पर स्वप्न कैसे ऊंचे देखे और एक दिन बन गया। तो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस कहां अप्लाई करना है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। कितने हो गए, 6। सबसे पहला बताया हाईली इफेक्टिव अमृत वेला, दूसरा बताया हार्नेसिंग द पावर ऑफ नॉलेज, तीसरा बताया हैबिट्स, चौथा बताया हेल्दी रिलेशनशिप्स, हाइटनिंग सर्विस मतलब इंटेंसिफाइंग सर्विस, सर्विस यदि कहीं पर नहीं हो रही है तो शायद मनसा सेवा की कमी है। बाबा ने कहा अंतिम समय की जो सेवा है केवल मनसा सेवा है, वाइब्रेशंस की सेवा है। तुम किसी को कुछ कहोगे नहीं, अपने आप आत्माएं आएगी। कब तक चिल्लाओगे, कब तक प्रोग्राम्स करोगे, एक ही जगह बैठे रहो और प्रकंपन भेजो, अपने आप आत्माएं आएगी। एक योगी था जो हिमालय पर बैठकर तपस्या करता था कई सालों तक, बचपन से ही। अमेरिका का एक व्यक्ति ने उसके बारे में सुना और पहुंचा और उसने कहा कि मैंने आपके बारे में बहुत सुना है, आपकी कितनी सिद्धियां हैं, आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप अमेरिका आओ हमारे साथ, बहुत सेवा हो जाएगी। उसने कहा मैं यहां बैठ के अमेरिका की जो सेवा कर रहा हूं ना वहां जाके नहीं कर पाऊंगा, मैं यहीं बैठ के कर रहा हूं, मेरे प्रकंपन वाइब्रेशन से सेवा कर रहे हैं, हाइटेंड सर्विस। उसके बाद में हेल्प इन अचीविंग गोल्स, जो कुछ हमारे जीवन का गोल है ब्राह्मण जीवन का वो अचीव करने के लिए हेल्प होती है। और लास्ट एच है हेल्थ, यदि हेल्दी बनना है स्वस्थ बनना है विधि क्या है, संकल्प, क्योंकि संकल्प का सीधा असर शरीर पर है। एक व्यक्ति दुखी रहता है दुखी रहता है दुखी रहता है, धीरे धीरे शरीर में बीमारियां चालू हो जाती है, इसको कहते हैं साइकोसोमैटिक इलनेस। कितने मरीज हमारे पास आते हैं, यहां दर्द वहां दर्द ये वो, सारी टेस्ट की हुई है, इतनी मोटी फाइल, सब टेस्ट नॉर्मल। अगर उनको कह दो सारी टेस्ट नॉर्मल तो एकदम से उदास हो जाते हैं। कितनी आशाएं लेकर आती थी कोई बड़ी सी बीमारी निकलेगी, अच्छी सी बीमारी कोई, पर जैसे ही सुनते हैं सब टेस्ट नॉर्मल, एकदम उदासी छा जाती है चेहरे पर। लोग कितने बीमार पड़ते और हम देखो एक बीमारी नहीं, और दर्द तो हमको बहुत है, शरीर पूरा बीमारियों से भरा है, पर रिपोर्ट्स में कुछ नहीं निकलता। डॉक्टर साहब एक साल से बुखार है, कितना, वो थर्मामीटर में नहीं आता है पर बुखार रहता है, यहां दर्द होता है, एंजियोग्राफी नॉर्मल, 2D एको नॉर्मल, पर यहां दर्द चालू है, बैक एक, MRI सब कुछ हो चुका है, सब नॉर्मल है, पर दर्द जाता नहीं है, कोई इलाज बताओ। और अगर कहे तो कि नहीं कुछ इलाज की जरूरत नहीं, तो एकदम नाराज, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढते, ये पैथी अच्छी नहीं, चलो आयुर्वेद में जाते, कोई आशा दे, अरे तुमको सही में बीमारी है, एकदम खुश। लोग कितना बीमार पड़ते हैं और कितने हम उनको गिफ्ट लेके जाते हैं, हम तो कभी नहीं पड़ते, हम भी कभी, हमको भी कभी सलाइन लगे, आहा, सलाइन की एक एक बूंद गिरती है, छाती गर्व से फूल जाती है, हम भी कुछ कम बीमार थोड़ी है, आहा, ये भी कैटेगरी है लोगों की, जहां बीमारी शरीर में है ही नहीं, बीमारी मन में है, मन दुखी है, मन उदास है, डिप्रेशन है, सप्रेशन है। और जैसे वाइब्रेशंस होंगे उसी तरह के वाइब्रेशंस वापस आएंगे और बीमारियों का निर्माण होगा। हेल्थ के लिए 7th एच है हेल्थ, लॉ ऑफ वाइब्रेशन से हेल्थ आएगी, मेरा शरीर स्वस्थ है, आई एम एंजॉइंग रेडिएंट हेल्थ, मेरा अंग प्रत्यंग एक एक मेरे सारे दर्द समाप्त हो गए, हीलिंग एनर्जी मेरे अंदर दौड़ रही है, मेरा माइंड सालिम, दादी कहती है सालिम, स्वस्थ मन, स्वस्थ शरीर, मेरा लिवर बहुत अच्छे से काम कर रहा है, पैनक्रियाज बहुत अच्छे से काम कर रहा है, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, लोगों को कॉन्स्टिपेशन है, लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्स्टिपेशन, सब कुछ ट्राई करते फिर भी ठीक नहीं होता है, पेट की गैस, एसिडिटी, क्या क्या है, सब कुछ करते फिर भी ठीक नहीं होता है, इंडोस्कोपी 4 बार हो गई है, दवाइयों का कोर्स चालू, एसिडिटी की गोली, नींद ही नहीं आती है, रात रात भर छत को दृष्टि देते रहते हैं, दीवारों को दृष्टि, करवटे बदलते रहते हैं, पर नींद ही नहीं आती है, जरूर कहीं ना कहीं मन में कुछ है, कुछ तो है, लॉ ऑफ वाइब्रेशन अप्लाई करना है। फिर से 3 बातें, मेरा शरीर स्वस्थ हो रहा है, दूसरा फ्यूचर, मेरा शरीर जल्दी ही ठीक हो जाएगा, बीमारी आ भी गई, एक टेक्निक होती है बीमारी से ठीक होने की, पासिंग अवे, जैसे किसी छोटी बच्ची को जुकाम हो गया, जुकाम जा रहा है, जुकाम जा रहा है, जुकाम जा रहा है, जुकाम जा रहा है, ऐसे ऐसे बोलते जाना, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ठीक हो रहा है, ऑपरेशन हो गया, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, मैं जल्दी ही ठीक हो जाऊंगा, कुछ भी डरने की बात नहीं है, एकदम अच्छा हूं, दर्द तो बिल्कुल है ही नहीं, है पर बोलना मुझे है ही नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बोलते बोलते ही हो जाएगा। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। जगदीश भाई एडमिट थे तो उनको दर्द होता था, तो वो कहते भाई साहब दर्द हो रहा है, नहीं नहीं दर्द थोड़ी ना है, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं, मास्टर सर्व शक्तिवान हूं ये बोल रहा हूं मैं तो मैं मास्टर सर्व शक्तिवान हूं। वो कहते मैं तो प्रैक्टिस चालू है अंदर, दर्द थोड़ी है। तो ये सेवन चीजों में ब्राह्मण जीवन में लॉ ऑफ वाइब्रेशन अप्लाई करना है। पहला बताया फिर से, हाईली इफेक्टिव अमृत वेला, फर्स्ट एच, सेकेंड एच हार्नेसिंग पावर ऑफ नॉलेज मुरली, तीसरा एच हैबिट्स, चौथा एच हेल्दी रिलेशनशिप्स ब्राह्मण परिवार के अंदर या बाहर भी, अगला हाइटनिंग सर्विस, उसके बाद हेल्प इन अचीविंग गोल्स और लास्ट हेल्थ। तो ये सेवन जगह पर लॉ ऑफ वाइब्रेशंस अप्लाई करना है। अभी है फाइव स्टेजेस, फाइव स्टेप्स ऑफ लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। पहली स्टेप है क्लैरिटी, मेक इंटेंशंस क्लियर, अर्थात जो मुझे अचीव करना है वो एकदम क्लियर चाहिए। अगर कंफ्यूजिंग मैसेजेस यूनिवर्स में भेजे, करना भी है नहीं भी करना है, और सुबह अमृत वेला उठूंगा भी, पर मुझे दर्द भी तो हो रहा है, बुखार जैसा लग रहा है, बाबा को भी पता है बुखार है, बाबा को पता है बुखार है, मैं लेट उठूंगा कल तो, अमृत वेला सेंटर पर जाना है, पर जाऊं कि नहीं जाऊं, घर पे भी तो किया जा सकता है, नहीं घर पे ही कर लेता हूं, नहीं 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 वहां पर बुलाया है चलो वहां जाता हूं, नहीं 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 घर पे ही करता हूं। कंफ्यूजिंग मैसेज भेज रहे हैं यूनिवर्स में तो सक्सेसफुल नहीं होगा। फर्स्ट स्टेप है, फाइव स्टेप्स है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के। फर्स्ट स्टेप टू मैनिफेस्ट लॉ ऑफ वाइब्रेशन, फाइव स्टेप्स। पहला, मेक इंटेंशंस क्लियर, क्लैरिटी, स्पष्टता हो। दूसरा, विजुअलाइजेशन, उसको देखना मन की आंखों से, रात को सोते समय देखना मैं सुबह उठ रहा हूं, तैयार हो रहा हूं, गाड़ी से जा रहा हूं, पहुंच गया सेंटर और अमृत वेला कर रहा हूं, कोई भी चीज को मन से देख लेना। तीसरा, इमोशंस, फील करना है उसको। लोग लॉ ऑफ वाइब्रेशंस या लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर काम तो करते हैं पर सफल नहीं होते और फिर कहते हैं लॉ ठीक नहीं है, क्योंकि फील नहीं करते उसको। जैसे एक बहन गुजर रही है, मार्केट में पहुंची, शोरूम है, वहां पे एक पर्स है, बहुत अच्छी पर्स, उसको लगा ये पर्स मुझे चाहिए, पर ये तो बहुत कॉस्टली है, कैसे लूं। फिर उसने कहा चलो मैं एक्सपेरिमेंट करती हूं। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये पर्स मेरी है। क्या एक्सपेरिमेंट किया? ये पर्स मेरी है, मैं इसको लगा के मार्केट से घूम रही हूं। उसने देखा, विजुलाइज किया, इमोशंस किया, फील किया, ये पर्स मेरी है, मैंने इसे अपना मान लिया है, और ये सोचते सोचते घर आ गई। शाम को उसका भाई आया विदेश से, और आते समय उसके लिए वही पर्स लेके आ गया। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, मैंने कहा ना, यूनिवर्स षड्यंत्र करेगा, द होल यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू, पर वो इंटेंशन बहुत प्योर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, विजुलाइज करना है उसको, बिल्कुल देखना, हाँ ऐसा। हम हमेशा उदाहरण देते हैं, हमारे जो मेडिकल कॉलेज के डीन थे डॉक्टर आयचित, हम जब मेडिकल कॉलेज में एंट्री हुए फर्स्ट ईयर, तब उनका लास्ट डे था मेडिकल कॉलेज का, रिटायरिंग एज अ डीन, उनका फेयरवेल स्पीच था, उन्होंने कहा इस मेडिकल कॉलेज में जब मैं पहली बार आया था 1960s में एज अ फर्स्ट MBBS स्टूडेंट, रैगिंग का डर, और एंट्री जब किया तो मैंने यह संकल्प किया एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का डीन बन जाऊंगा, इतना ऊंचा। फर्स्ट MBBS का लड़का जो डरता है, सीनियर्स घूमते रहते हैं यहां वहां, कोई पकड़ ना ले, रैगिंग का भय, उस बीच उन्होंने क्या संकल्प किया, एक दिन डीन बनना, मतलब कितनी बड़ी जर्नी है, MBBS, PG, फिर जॉब, रेसिडेंसी, लेक्चरर, पहले ट्यूटर, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर, और प्रोफेसर लॉन्ग एक टाइम, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस, तब कहीं जाके डीन बनता है व्यक्ति, दिस मच जर्नी। और वो फर्स्ट MBBS का उन्होंने संकल्प किया कि एक दिन इसी मेडिकल कॉलेज का मैं डीन बन जाऊंगा, और वो बन गए। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस। तो थर्ड स्टेप क्या है? फील करना उसको, यस आई हैव बिकम। जैसे एक एम्प्लॉय इंटरव्यू देने आता है, बॉस पूछता है तुम्हारा गोल क्या है, व्हाट इज योर एम, वो पूछता है, वो कहता है आई विल नॉट स्टॉप अनलेस अनटिल आई सी यू इन योर प्लेस, जब तक मैं तुम अपने आप को तुम्हारी जगह नहीं देख लूंगा शांत नहीं बैठूंगा, तुमको हटा के मैं बैठूंगा, मतलब ऐसा कहना है उसका, इतना ऊंचा लक्ष्य। चौथा, ट्रस्ट, फेथ, विश्वास, निश्चय, विश्वास इस नियम में कि हां होगा। बाइबल में कहा है इफ ई हैव फेथ इन हार्ट एंड इफ ई ऑर्डर द माउंटेन ओ गेट अप एंड गेट प्लांटेड ऑन द सी एंड इट शैल बी डन। यदि तुम्हें विश्वास है कि हे पर्वत, और तुम पर्वत से कहो हे पर्वत उठ और जाकर समुद्र में गिर, तो वो तुम्हारी बात मानेगा, होगा ये। अगर हम जाए तो सबसे पहला तो हमको ये डाउट है, ऐसा तो नहीं होने वाला है। पहली चीज है डाउट है, जहां डाउट है वहां नहीं होगा, जहां कोई डाउट नहीं है होगा ही। जैसे अकाल पड़ गया, गांव के सारे लोग जाने लगे कहां पर, मंदिर यज्ञ करने, एक छोटी सी बच्ची भी जाने लगी, बारिश ही नहीं है एक साल से, छोटी सी बच्ची भी जाने लगी, उसको उसने लोगों से पूछा कहां जा रहे हो, उसने कहा, सबने कहा हम बारिश के लिए यज्ञ करने जा रहे हैं, तो वो भी जाने लगती है, और जाते जाते लोग उससे पूछते ये तुम्हारे हाथ में क्या है, वो कहते छाता, किस लिए, वो कहते यज्ञ करेंगे फिर बारिश होगी तो छाता तो चाहिए ना। शी इज द ओनली वन हु हैज गॉट द फेथ, बाकी जो यज्ञ करने जा रहे हैं उनको तो फेथ भी नहीं है कि बारिश होगी। फेथ मूव्स माउंटेन्स, विश्वास निश्चय। तो चौथी जो स्टेप्स है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस में, वो क्या है? फेथ, फेथ, ट्रस्ट, बहुत ज्यादा फेथ, और लास्ट में है डिटैचमेंट। लोग एक इच्छा करते हैं और उससे ऑब्सेस हो जाते हैं, ऑब्सेस नहीं होना है, उससे डिटैच रहना है। लॉ ऑफ वाइब्रेशंस तभी काम करता है, इट्स लाइक प्लांट, झाड़ है, उसको खाद देते रहो, पानी देते रहो, सब कुछ करते रहो और डिटैच रहो, पेशेंस चाहिए, अपने आप वो बीज जो है झाड़ बनेगा एक दिन। उसके बारे में सोचते रहते, अच्छा हमने लॉ ऑफ, चलो लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम करते, ये पूरी मुरली मुझे याद हो जाएगी, पूरी मुरली मुझे याद हो जाएगी, पूरी मुरली, और हुई नहीं, और फिर बेचैन होते हैं, क्यों ऐसा हो गया, ये पॉइंट मुझे धारण ही नहीं हुई, क्यों ऐसा हो? बेचैन होते हैं। विधिवत काम करते जाओ और छोड़ दो, उससे भी डिटैच रहो, अपने आप होगा। तो ये 5 स्टेप्स है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस के। उसके बाद में है एक्सरसाइजेस, कौन सी एक्सरसाइज करनी है जिससे लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम करेगा। तो ऐसे कहा जाता है कि ऐसी 10 एक्सरसाइज है। पहली एक्सरसाइज जो बताई है, राइट अ ग्रेटिट्यूड लिस्ट, धन्यवाद, ये प्योर वाइब्रेशंस माइंड में क्रिएट करने हैं, प्योर वाइब्रेशंस के लिए धन्यवाद। कल रात में भी धन्यवाद की हम चर्चा कर रहे थे, हर चीज के लिए धन्यवाद, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड जर्नल। एटलीस्ट सोते समय 3 चीजें लिखनी है जिसके लिए आज धन्यवाद। दूसरा है क्रिएट अ बोर्ड विजन, बोर्ड विजन क्रिएट करना है, ए विजन बोर्ड, एक ऐसा बोर्ड रखना है घर पर जिस पर अपना एम लिख के रखना कि मुझे ये बनना है, विजन बोर्ड जिसको कहते हैं। जैसे सीक्रेट नाम की जो किताब या डॉक्यूमेंट्री जो बनी है, उसका एक जो ऑथर है उसने अपना अनुभव लिखा कि उसने वो घर बनाना चाहता था, तो उसने एक विजन बोर्ड बनाया और जिस पर एक चित्र बनाया, मेरा घर ऐसा होना चाहिए, और फिर भूल गया उसको। फिर कई सालों के बाद एक घर खरीदा उसने, और अचानक वो पुराना विजन बोर्ड उसको मिला, तो देखा ये घर और ये घर सेम है, जो विजन उसने बनाया था और भूल गया था वो अपने आप साकार हुआ बाद में। तो विजन बोर्ड, उसके बाद में रेपिटिशंस, बार बार दोहराते रहना अफर्मेशंस को, जो बात बताई तीन सच, तीन बातों में, प्रेजेंट, फ्यूचर और नेचुरल, रिपीट करते रहना। उसके बाद में है टॉक अबाउट योर ड्रीम्स, बात करते रहना लोगों के साथ, मैं ऐसा बनूंगा, जैसे कितने फिल्म स्टार्स और ये सारे लोग बचपन से ही सोचते थे, ड्रीम करते थे कि मैं ये बन जा, बन रहा हूं, बन रहा हूं, बन रहा हूं। ऐसा कहते हैं कि हर साल मुंबई में 8000 लोग आते हैं हीरो बनने के लिए, उसमें से कितने बनते हैं, एक खाद, सब नहीं बन पाते। अफर्मेशन इतना स्ट्रांग नहीं है सबका, कोई भी इच्छा हो लौकिक अलौकिक, बहुत स्ट्रांग डिजायर की आवश्यकता है। और उसके बारे में बात करते रहना, अपने ड्रीम के बारे में। और फिर कुछ और भी बातें बताई है, जैसे प्रकृति के समीप जाओ, या जो तुमको बनना है उसका वीडियो देखो, आपको वीडियो मिलेगा। जैसे किसी को बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है तो बिजनेसमैन के बारे में वीडियो देखो, या उससे रिलेटेड किताबें पढ़ो। तो ये सारी टेक्निक्स है लॉ ऑफ वाइब्रेशंस की। सारा संसार वाइब्रेशंस ही वाइब्रेशंस है। तो कहां हमको ब्राह्मण जीवन में अप्लाई करना है, कौन से टूल्स यूज करने हैं, और एक चीज है पेशेंस, बहुत धैर्यता चाहिए। धीरे धीरे होगा सब कुछ, फटाफट कुछ भी नहीं होता है, बहुत स्लोली 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 ये लॉ ऑफ वाइब्रेशंस काम करेगा। हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है एक भूमि है, खेत है, संकल्प एक बीज है। संकल्प कॉन्शियस माइंड में होता है, पर कॉन्शियस माइंड में कोई भी संकल्प लंबा समय करते रहो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस में जाएगा। एंड टूल्स आर विजुअलाइजेशन, टूल्स आर अफर्मेशंस, ये दो सबसे पावरफुल टूल है जिसके आधार से ये काम होगा। और जैसे उसमें समाएगा धीरे 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 साकार होने लगेगा। तो ये सारी बातें थी लॉ ऑफ वाइब्रेशंस की। हमारे प्रकंपन बाबा कहते हैं शुभ हो, प्योर हो, शक्तिशाली हो। बाबा ने कहा है कि तुम आत्माओं को साक्षात्कार कराओ, तुम्हारे चेहरे से साक्षात्कार हो, तुम्हारा ये जो मस्तक है ये टीवी का बोर्ड बन जाए, नैनों से साक्षात्कार कराओ, तुम्हारे नैनों में उनको आत्मा और परमात्मा, परमधाम सुखधाम की झलक दिखाई दे। रूहानी मुस्कुराहट आत्माओं का भाग्य बदल दे, ये अंतिम सेवा है मौन की, साइलेंस की, शक्ति की, मनसा की, वाइब्रेशंस की। तो इस लॉ ऑफ वाइब्रेशंस पर काम करना है, जो बताया सात बातें जिस पर अप्लाई करना है, फाइव स्टेप्स, और फिर ये लास्ट में कुछ और बातें थी, विजन बोर्ड, विजुअलाइजेशन, या ये सारी जो बातें बताई, ग्रेटिट्यूड, डोनेट करो, हेल्प करो, प्रकृति के समीप जाओ। बहुत स्लोली स्लोली सब कुछ होगा और अंत में एक समय आएगा जब आत्माओं को ये पता चल जाएगा कि यही सत्य है, इसके अतिरिक्त इस संसार में और कोई आत्मा इधर आ जाएगी। भारत में फरिश्तों का गायन नहीं है, भारत में देवदूतों का गायन है, पर विदेश में फरिश्तों द्वारा साक्षात्कार होंगे। तीन धर्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम एंड ज्यूइश, इसमें एंजल्स का गायन है, यहां पर देवदूत का गायन नहीं है। यहां पर साक्षात्कार किसके द्वारा होगा, जो ब्राह्मण विदेश में रहते हैं वो उनको फरिश्ते रूप में उन लोगों को वो दिखाई देंगे, दूसरे धर्म की आत्माओं को, और तब वो ज्ञान में आएंगे, क्योंकि उनके लिटरेचर में एंजल्स का गायन है, मैसेंजर्स, पयंबर, पैगंबर का गायन है, उनको उसी रूप में खुदा का नूर दिखाई देगा हमारे द्वारा, और तब वो आत्मा कहेगी हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, मतलब हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, अर्थात गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, हमी अस्तु, हमी अस्तु, हमी अस्तु, अर्थात यदि स्वर्ग कहीं है तो कश्मीर के लिए कभी कहा था यही है, यही है, यही है। गर फिरदौस बर रूए जमी अस्त, अमी अस्तु, अमी अस्तु, अमी अस्तु। अच्छा, ओम शांति।
पर फिर दोस्त पर रूए जमीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त मेरी जान रूह दिल से वापस हमी अस्त हमी अस्त घर फिर दोस्त पर रूए जमीन अस्त हमी अस्त हमी अस्त मेरी जान रूह दिल से वापस हमी अस्त हमी अस्त खामोश दरख्तों के साए ये खौफ है सोया सा ओ कुछ खोया खोया हमने अभी ये चेहरा है रोया सा मुरझाते गुरु ने झुक के कहा हमें आदत है हमी अस्तो चलते लम्हों ने रुक के कहा इनायत है हमी अस्तो पंछी सारे उड़ गए कहीं बस घोंसले हमी अस्तो हर जन्नत है जमीन पे कहीं यहीं पे है हमी अस्तो